अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हाजिर हूँ दयारे दिल नावल की किस्त नंबर 7 के साथ। इसके पास तो इसके हमदर्द और मेहरबान बहुत हैं, हमारे पास तो बस ये एक दादा ही हैं। इन्हें क्यों हमसे छीन लेने यहाँ आई है, वो वली के बाजू पर सर रखकर फिर जारो कितार रोने लगी। रोते रोते इसने यक लख्त सर ऊपर उठाया और बहुत नफरत से बोली, एक बात कान खोल कर सुन लो फारा खान, अगर मेरे आगा जान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें चैन से जीने तो हरगिज़ नहीं दूंगी। वली इसके कंधे के गिर्द हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ में बहुत प्यार से इसे कुछ कहता इसे करीब नजर आती एक बेंच की तरफ ले गया। अबाद ने एक शर्मिंदा सी निगाह फारा पर डाली। वो शायद जरमीना के रवैये की तलाफी के लिए इससे कुछ कहना भी चाहता था, मगर वो इन तीनों पर एक निगाह डालती अंदर आगा जान के पास सीसीयू में आ गई। इन्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी, इनकी आंखें बंद थीं, इनके सीने पर कुछ तार चिस्पां थे, इनके दिल की रफ्तार इनकी धड़कनों का शुमार करती कुछ मशीनें इनके करीब मौजूद थीं। वो सांस सही से ले रहे हैं, इनका दिल धड़क रहा है कि नहीं, इसने एक डरी डरी निगाह इन पर डाली और फिर इस मशीन पर। इनके सुई पेवस्त हुए हाथ को इसने झुक कर आहिस्तगी से चूमा। आपको मेरे पास से अपने बेटे की खुशबू आती है और मुझे आपके पास से अपने बाप की खुशबू आती है। हमारा रिश्ता तो इतना मजबूत इतना अटूट है। बहुत बुरी फारा को आपने बहुत देखा है, एक बार इसे अच्छा बनने का मौका भी देकर देखें। अभी अभी आपने मुझसे कहा था आपकी सांसें आपकी धड़कनें मेरे साथ जुड़ी हैं, फिर जब मैं सांस ले रही हूँ मेरा दिल धड़क रहा है तो आपकी सांसें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, आपकी धड़कनें कैसे खामोश हो सकती हैं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में इनसे कह रही थी, इनकी आवाज़ इनकी समातें सुन रही हैं, इसे यकीन था। इसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू बड़े खामोशी से गिर रहे थे। आप बरसों से मुझ पर मोहब्बतों की बारिश बरसाते आए हैं, एक बार मुझे भी तो मौका दें, मैं आपसे अपनी मोहब्बत साबित कर सकूं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं आगा जान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। वो धीमी आवाज में सरगोशी के से अंदाज में ऐसे जैसे इन्हें डिस्टर्ब ना करना चाहती हो आंसू बहाती इन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। इसी वक्त पर्दा खींच कर कोई अंदर आया, इसने गर्दन घुमा कर देखा और कुर्सी पर से फौरन खड़ी हो गई। वली था, इसके साथ एक सीनियर डॉक्टर और पीछे एक जूनियर डॉक्टर और नर्स भी थे। वो खामोशी से वहां से निकल आई, मगर निकलते निकलते जो आवाजें और बातें इसने सुनी वो इसे ये समझा गई कि ये सीनियर डॉक्टर आगा जान के कार्डियोलॉजिस्ट थे। आगा जान बरसों से इन्हीं के जेर इलाज थे। जरमीना सीसीयू लिखे शीशे के दरवाजे की तरफ मुसलसल उम्मीद आस खौफ और हरास से देखे जा रही थी और आबाद इसके पास बेंच पर बैठा था। वो एक तरफ खामोशी से आकर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो हॉस्पिटल आने के रास्ते में सरसरी इनकी सारी रिपोर्ट्स देख आई थी, इनकी तीनों हार्ट अटैक्स की तफसीलात भी देख ली थी, इनका दिल कितने फीसद काम कर रहा है और कितने फीसद जख्म खोरदा बेकार हो चुका है वो ये भी जान चुकी थी। पहले हार्ट अटैक की तारीख इसकी पैदाइश से भी कबल की थी। दूसरा हार्ट अटैक वो था जब सहेब खान का इंतकाल हुआ था और जब बिस्तर पर बीमार पड़े इस वजूद से इसे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी और इसकी मम्मी को तो वो बीमारी ही ढोंग और ड्रामा लगी थी। और तीसरे की तो बात ही अलग थी। 25% जिसका दिल काम कर रहा हो, जो 3 हार्ट अटैक सह चुका हो, जो मामूली कामों के करने से भी अंजाइना में मुब्तला हो जाता हो, इसके लिए डॉक्टर क्या कहता। मैं दवा करता हूँ, आप दुआ कीजिए, मरीज को खुश रखिए, इसे टेंशन में ना आने दीजिए, इसे खुशगवार माहौल दीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई इख्तलाफी अमूल लड़ाई झगड़ा इसके सामने ना हो। अगर नफरतों के मजबूत किले में मकैद इसकी पोती ऐसा होने दे तो। घड़ी घंटे आगे बढ़ा रही थी और वो चारों किसी तयशुदा मायदे के बगैर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अंदर इनके पास ICU में जाकर बैठते और फिर दूसरे को अंदर आने का मौका देते खुद बाहर आ जाते थे। आबाद ने अपने घर फोन करके अपने छोटे भाई से दोनों बच्चों को घर ले जाने को कह दिया था कि आगा जान के घर पर बहुत से मुलाजमी की मौजूदगी के बावजूद भी वो बहुत छोटे बच्चे माँ बाप के बगैर अकेले रह नहीं सकते थे। आगा जान के पास मैं हूँ, तुम लोग घर जाओ, रात 10 बजे वली जरमीना और आबाद से बोला था। इसकी तरफ देखे या इसका नाम लिए बगैर ये बात कही गई थी, मगर जाहिर है इस जुमले की मुखातब वो भी थी। जरमीना घर जाने के लिए किसी कीमत पर आमादा नहीं थी। वो वली और अब्बास से यहाँ रुकने की जिद कर रही थी। अब्बास और वली ने बड़ी मुश्किलों से इसे अपने घर पर से इसे याद कर रहे होंगे, और CCU में तो वैसे भी एक से ज्यादा कोई फर्द रुक नहीं सकता। जैसी बातें कहकर घर जाने पर राजी किया था, जरमीना दोबारा अंदर आगा जान को देखने चली गई थी। वो चंद मिनटों बाद वापस आएगी तो यकीनन वली इसे भी इन लोगों के साथ जाने के लिए कहेगा। बहुत ज्यादा मुस्तरिब और बेकरार होते वो सीधी वली के पास आई। वली, मैं आगा जान के पास रुकना चाहती हूँ। नहीं, तुम यहाँ अकेले। वली, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो। वो कहती थी कि अजनबियों के सामने आंसू नहीं बहाती, और इस पल वली से इल्तजाई अंदाज में ये बात कहते इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। दोपहर से अस्पताल में आने के बाद जरमीना जितना रोई थी वो इतनी ही खामोश रही थी। दीवार से टेक लगाकर कॉरिडोर में अकेली बिल्कुल खामोश खड़ी रही थी। अब्बास ने इसे बेंच पर बैठने को एक दो बार कहा था, मगर वो वैसे ही खड़ी रही थी। इस वक्त सामने खड़े अब्बास ने इसे यूं रोते तासुब से देखा। ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि वो इसे तसल्ली दे सकता या कोई अपनायत भरी बात कह सकता, मगर इस वक्त इसका इसे तसल्ली देने को दिल चाहा था। अब्बास ने वली को बगौर देखा। काश वली इसे यहाँ रुकने दे, इसने दिल में सोचा। वली ने फारा को एक लम्हे के लिए देखने के बाद कुछ सोचा था, फिर इस पर से नजरें हटाकर बोला, ठीक है। जरमीना बाई से सख्त शाकी कि इसे घर बेचकर वो इस लड़की को आगा जान के पास रुकने की इजाजत दे रहा है जो आगा जान की आज इस हालत की जिम्मेदार है। अब्बास के साथ चली गई थी। इन दोनों के जाने के बाद वो आगा जान के पास अंदर आ गई और वली बाहर शायद किसी बेंच पर बैठा था। आगा जान को बदस्तूर ऑक्सीजन लगी थी। सुकून और अद्वियात के जेर असर वो गहरी नींद सो रहे थे। वो कुर्सी इनके बेड के करीब करीब करके इनके पास बैठी हुई थी। वो एक टक इन्हें देख रही थी और इसके जहन की स्क्रीन पर माजी किसी फिल्म की तरह चल रहा था। इस इंसान की इस मौजूदा हालत की जिम्मेदार वो थी, इन्हें इस हालत तक पहुंचाने वाली वो थी, मगर वो याद करना चाहती थी माजी में इस शख्स के साथ इसने क्या क्या कुछ गलत किया था। आ गए मेरे बच्चे, ये इस बूढ़े इंसान के लबों से इसने पहले अल्फाज सुने थे। ये इसकी इसके साथ पहली मुलाकात थी। सरसरी निगाहों से इसने इस बूढ़े इंसान को किसी तवज्जो और दिलचस्पी के बगैर देखा था। यही वो आगा जान थे ना जिन्होंने इसके डैडी को मम्मी से मोहब्बत के जुर्म की सजा देते बरसों पहले इनको अपने घर से निकाल दिया था। इसकी मम्मी को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया था। इसके दिल में इसके लिए नफरत थी। फारा, अपने दादा के पास नहीं आओगी? रूही बेटा, तुम वहां क्यों रुक गई? आओ, यहाँ आओ। क्या अभी तक मुझसे नाराज हो? देखो तो सही, कैसे मुझसे छूट गया। उन्होंने इनके इस्तकबाल के लिए उठकर बैठने की कोशिश की थी मगर उठ ना सके थे। बेटे की मौत के तीसरे दिन इनके बीमार दिल पर एक ताजा जख्म लगा था। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो कई दिन अस्पताल रहकर उस रोज घर वापस आए थे। वो अपने इस वक्त के रवैयों के लिए खुद को टीनेजर, ना समझ, ना तजुर्बाकार, कामसिन कहकर जान छुड़ा ले, मगर मम्मी के रवैये को क्या नाम दे जिन्होंने रस्म दुनिया के लिए भी आगा जान से इनके बेटे के इंतकाल पर ताजियत ना की, शोहर को गम की इस घड़ी में हौसला ना दिया, इसकी दिलजोई ना की, वली और जरमीना के सरों पर शफकत भरा हाथ ना फेरा। मम्मी ने हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम आगा जान पर डाला। आखिर क्यों? इनका शोहर आगा जान ने इनसे दूर करवा दिया था या वो खुद बदगुमानियों में घिर कर शोहर से दूर हो गई थी? डैडी 23 साल बाद अपने घर आए थे, बाप से मिलने थे, और किस हाल में मिले थे? इनका मुस्कुराना, जिंदगी से भरपूर सेहतमंद भाई जिंदगी की बाजी हार गया था। इन्हें मना मना कर वापस बुला बुला कर हार गया था। बाप शदीद बीमार था। इन्हें शिद्दत से यह एहसास नदामत हो रहा था कि वो अपनी जिद तोड़कर यहाँ पहले क्यों नहीं आए। मम्मी बजाय इनकी कैफियत, इनका गम, इनका दर्द समझने के इनसे दूर हो गई, अपने और उनके बीच एक अजनबियत कायम कर डाली। उन्हें ने तो यहाँ आने से कबल ही डैडी की 15 रोजा गैर हाजिरी और दौरे पर ये बदगुमानी और शक दिल में रासख कर लिया था कि डैडी को इनके घर वालों ने मम्मी के खिलाफ कर दिया है। वो इस घर में पहली बार आई थी, वो अपने ससुराल से पहली बार अपने सुसर से मिल रही थी, मगर दिल में कीना नफरत लिए। इसका निकाह तो एक बिल्कुल अलग वाकया था और इस वाकये की वजूहात आगा जाने इसे आज बताई थी, लेकिन आज वो सोच रही थी अगर वो निकाह ना होता, सिर्फ अपना लाहौर का घर छोड़कर पिशावर आगा जान के घर मुस्तकिल रिहायश तैयार करने की बात ही डैडी ने की होती, मम्मी तब भी यूं ही रिएक्ट करती जैसे उन्होंने तब किया था। इस घर ने बरसों इन्हें यहाँ के बड़ू बहू की हैसियत से तस्लीम ना किया था और अब वो इस घर और यहाँ बसने वालों को माफ करने को तैयार ना थी। ये ना सोचा कि इस घर ने ऐसा 23 वर्ष पहले किया था। डैडी इन 23 वर्षों में पलट कर कभी यहाँ आए ही नहीं। अगर पलट कर आते तो क्या पता ये घर बाहें खोलकर इनका इस्तकबाल करता, इसके निकाह के लिए होने वाला मम्मी और डैडी का झगड़ा, जिसके लिए इसने हमेशा मम्मी को मजलूम और डैडी को जालिम समझा था, आज जब डैडी के नज़रिए से सोच रही थी, इनके दिल में झांक कर उनकी निगाहों से उस दिन को याद कर रही थी, तो एहसास हो रहा था झगड़ा डैडी नहीं मम्मी कर रही थी। वो शोहर से किस लहजे और किस अंदाज में मुखातिब थी, रूही बेटा सारे गिले रंजिशें और पिछली हर बात भूल जाओ, तुम मेरे लिए मेरी बहू नहीं बेटी हो। मम्मी की आंखों में मौजूद नफरत देखने के बावजूद किस तरह इन 3 दिनों में कई बार मम्मी ये जुमले कह चुके थे, और वो नफरत भरी खामोशी लिए इन्हें देखती रही थी। डैडी को बीवी के इस तहकीर और नफरत भरे रवैये से किस कदर सदमा पहुंचा होगा, कितना दुख हुआ होगा, जिसकी मोहब्बत में उन्होंने बाप की नाफरमानी करके नाराजी मोल लेकर अपने घर और अपनी हर महबूब चीज को छोड़ डाला था। आज जब वो इससे ही उम्मीद करते थे कि वो इनको समझते, दुख की इस घड़ी में इनके साथ खड़ी होंगी, तब वो इससे नाराज होकर इनके मुकाबले जा खड़ी हुई थी। मम्मी ने सिर्फ इसी पर इक्तफा ना किया, लाहौर वापस आकर वो अपने भाई के घर चली गई। ये ऐलान था इस बात का कि वो शोहर के साथ पेशावर इसके बाप के घर नहीं जाएंगी। वो अगर बीवी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो अपने जाने का इरादा मुलतवी कर दें। वो अपने निकाह पर डैडी से इतनी नाराज और शाकी थी कि इस मम्मी का हर रवैया दुरुस्त नजर आता था। हमेशा इतनी चाहते लुटाने वाला बाप, बेटी से वालहाना मोहब्बत करने वाला बाप, अगर अपनी आदतों मिजाज के खिलाफ हमेशा से कुछ मुख्तलिफ कर रहा था, इसके असबाब जानने की कोशिश किए बगैर इसे भी बाप जालिम और सख्तगीर नजर आने लगा था। शोहर की जिंदगी के आखिरी लम्हों में इसके पास ना होने का इल्जाम मम्मी बड़े इत्मीनान से आगा जान पर डालकर अपने अंदर सर उठाते सास निदामतों पेशेमानी को चैन दिला देती थी, मगर जो सच था वो सच था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साथ गुजार देने के बावजूद शोहर की जिंदगी के आखिरी दिनों में इसे समझा नहीं। 23 साल तक जिस शोहर ने इन्हें मोहब्बत, इज्जत, वफा, सुख और चैन सब कुछ दिया, जब इसे जरूरत पड़ी तब वो अपनी वफा निभाने इसके साथ खड़ी ना हुई, और वो खुद 18 साल मोहब्बतें चाहते और शफकतें लुटाने वाला बाप क्या इस पर अपनी बेटी पर इतना हक भी नहीं रखता था कि अगर कहीं इसका रिश्ता तय करना चाहता तो कर देता? क्या वो ऐसी बेटी ना थी जो सोच सकती, मेरा मोहब्बतें लुटाने वाला बाप कभी मेरे लिए कुछ गलत सोच नहीं सकता, इसके इस फैसले का यकीनन कोई सबब है और यकीनन वो इसमें मेरी बेहतरी देख रहा है। संग दिली और जुल्म की हद थी, इसने और मम्मी ने डैडी की मौत का जिम्मा तक इस शख्स को करार दे दिया था। जिस रोज इसका बाप मरा था, जिस रोज मम्मी का शोहर मरा था, उस रोज इस शख्स का बेटा भी तो मरा था। वो जो इसका बाप था, इसकी माँ का शोहर था, वो इस शख्स का बेटा भी तो था। दुख कहते किसको है, क्या वो जानती है? इस कमजोर, नातवां, बीमार इंसान ने एक नहीं अपने दोनों बेटे खो दिए थे, यक्के बाद दीगरे महज चंद दिनों के वक्फे से। बजाय इसके कि बेटे बाप के जनाजे को कंधा देते, इस बूढ़े बाप ने बेटों के जनाजों को कंधा दिया, उन्हें अपने हाथों से मिट्टी भी उतारा, अपने हाथों से इनकी कब्रों पर मिट्टी डाली। आगा जान की तबीयत काफी खराब है, आप लोग अगर कुछ देर ठहर जाते तो। वो आगा जान का कोई करीबी रिश्तेदार था जो डैडी की तदफीन के फौरन बाद इन्हें वापस लौटता देखकर कह रहा था। वो लोग गेट के पास खड़े थे, मम्मी, तजम्मुल मामू और वो गेट से निकल रहे थे। वली भी इस रिश्तेदार के साथ खड़ा था। आगा जान कब्रस्तान से आते ही अपने कमरे में चले गए थे। कोई कह रहा था शायद इनकी तबीयत भी खराब हो गई है, मगर इसे और मम्मी को इनके सदमे से कोई लेना देना नहीं था। इस घर में ठहर जाऊं, दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे इस मनहूस घर और यहाँ रहने वालों की शक्लें जिंदगी भर ना दिखाए। मम्मी इस रिश्तेदार को नफरत से जवाब देती। तजम्मुल मामू और इसे साल लिए वहां से बाहर निकल गई थी। आपने खुद साख्ता नफरतों से निकलकर कभी सोचा ना था, आज सब याद आ रहा था तो सोच रही थी आगा जाने वो पहाड़ सा गम सहा किस तरह होगा, इनका दिल तो गम से फट रहा होगा। पहले एक बेटा फिर दूसरा जो मिला भी 23 बरसों की जुदाई के बाद था, मगर वो बहादुर और सब्र हिम्मत का पैकर अपने गमों से समझौता करता, अपनी बीमारी और दुखों को भुलाकर चंद ही दिनों में बेवा बहू और पोती के पास आ पहुंचा था। ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम लोग मेरे साथ रहते, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी ये मर्जी नहीं तो हम फारा का लाहौर ही में दाखिला करवा देते हैं। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था, और इस शख्स के बेबहा मोहब्बतों और यहाँ से बेहिसाब नफरतों का। वो तो आज भी जब इसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, तब भी बहुत डरते डरते जब अपनी मोहब्बत का इसे यकीन दिलाना चाह रहा था तो अपनी बीमार का हर जिक्र दानास्ता छोड़ गया था। इस पोती की जिद इसके हठधर्मी और इसके दिल के मरीज को मौत के मुंह में ले जा रही है। और वो 2 महीने पहले तीसरी बार दिल के दौरे का शिकार हुआ। पोती के नारवा रवैये इसके मर्ज की शिद्दतों को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। इसने तो इससे ये शिकवा ये गिला तक ना किया। ये इसकी सच्ची मोहब्बत ही तो थी जो पोती को नदामत में डालना नहीं चाहती थी। वो तो इसकी माँ का सरीह जुल्म, इसकी ज्यादतियां और इसकी गलतियां भी इसे बहुत डर डर कर बता रहा था, कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो इसे इसकी माँ के खिलाफ करने की साजिश कर रहे हैं, कहीं ये सोच कर इनसे बदगुमान ना हो जाए। इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा रहे हैं, इनके घरेलू और दीगर तमाम अखराजात और इसकी तालीम का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले रहे हैं। तो वो इनका फर्ज है और इन माँ बेटी का हक है। हाँ, बदले में इस शख्स के कोई हकूक नहीं, इन माँ बेटी के कोई फराइज नहीं। मोहब्बत ना करती वो दोनों इसके एहसान मंद ही हो जाती। डैडी के इंतकाल के बाद वो और मम्मी किस माली बहरान में आ जाते अगर आगा जान ना होते तो। इसकी मेडिकल की महंगी तालीम तो एक तरफ रही, घर के अखराजात तक के लिए चंद ही माह के अंदर से मम्मी कोई मुलाजमत अख्तियार करना पड़ती। जाती घर, गाड़ी, थोड़े बहुत शेयर जिनका डिविडेंड आ जाया करता था, मम्मी के जेवरात और बहुत ही कलील बैंक बैलेंस पे मुश्तमिल था इनका कुल असासा डैडी के इंतकाल के वक्त। आज अगर वो डॉक्टर बहरोज खान कहलाई जाती है तो किसके सबब, किसके तुफैल। हक हक हक, बहुत सुना ये लफ्ज इसने मम्मी से, तजम्मुल मामू से, मोई से। फर्ज फर्ज फर्ज, ये लफ्ज किसी ने सिखाया नहीं तो इसने सीखना चाहा भी नहीं। जिस दादा के पास पर वो इसका सारा कुंबा ऐश करता रहा, वो कभी इसकी शुक्रगुजार एहसानमंद भी ना हुई। इस बूढ़े शख्स ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था कि फारा बहरोज खान के दिल में इसकी मोहब्बत ना सही, हमदर्दी और एहसानमंदी भी पैदा ना हो सकी। आखिर वो इससे खफा किस बात पर थी? अगर अपने निकाह पर थी तो वो इसके बाप ने करवाया था, वो जाकर अपने इस मरे हुए बाप से लड़े, या फिर वो इसकी मोहब्बतों से बेजार है, इसकी चाहतों और लुफ्तों से नाला तंग है। फारा यार, मम्मी से जिद करके आ जाओ ना जरमीना की शादी में, इन्हें भी जिद करके जबरदस्ती साथ ले आओ, हम सब यहाँ मिलकर खूब मजे करेंगे। मैं दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ कब मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो और वो अपने आगा जान के पास हमेशा के लिए आ जाए। जब तुम मेरे पास आ जाओगे ना, फिर तुम और मैं, हम दोनों यहाँ मिलकर कोई ऐसी तरकीब सोचेंगे कि रूही भी यहाँ हमारे पास ही आकर रहने लगे। फारा, ईद पर तुम्हारी बहुत याद आई बेटा। वली और जरमीना मेरे पास थे मगर तुम नहीं थी ना, इसलिए हर खुशी अधूरी थी। मगर मैंने रमजान में बड़ी शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगी है कि अगली ईद अगर मेरे नसीब में है तो इसमें मेरे तीनों जिगर के टुकड़े मेरे साथ हों। तुम्हारी दादी के जेवरा तो पुराने फैशन के हो गए, अब डॉक्टर साहबा थोड़ी ही कोई आउटडेटेड चीज पहनेंगी। मैंने तुम्हारे लिए सब जेवर बिल्कुल नए और आजकल के फैशन के मुताबिक बनवाए हैं, यानी अब मुझे इलाज के लिए इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर फारा बहरोज खान अपने आगा जान का खुद इलाज करेंगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। काश आज मेरा बहरोज जिंदा होता, अपनी बेटी को डॉक्टर बना देख कर खुशी से इसके पांव ही ना टिकते जमीन पर। फारा, तुमने अपने डैडी का ख्वाब पूरा कर दिया बेटा। सच्चे प्यार और वालहाना मोहब्बत से महकते ये जुमले इसने अपने कानों से सुने थे। खुद एहतसाबी की ये रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। रात का ये आखिरी पहर था, वो गहरी नींद सो रहे थे और वो कई घंटों से टिकटिकी बांधे इन्हें देख रही थी। 4 जनवरी की ये एक नहायत ही सर्द रात थी। सीसीयू में मुकम्मल और भरपूर हीटिंग होने के सबब सर्दी का कोई असर ना था। वो कुर्सी पर बगैर किसी कंबल के सिर्फ अपनी शाल लपेट कर बैठी थी और जरा सी भी ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। मगर सीसीयू से बाहर कोई हीटिंग ना थी, इससे वली का ख्याल आया वो इस ठंड में यकबस्ता कॉरिडोर में किसी बेंच पर बैठा होगा। वो आस्तगी से बगैर कोई आवाज पैदा किए उठी और पर्दा हटाकर आगा जान के कैबिन से बाहर निकल आई। वो पूरा कॉरिडोर तय करती वली की तलाश में नजरें घुमाती रही। ये कॉरिडोर आगे, दाएं और बाएं में मजीद कॉरिडोर्स में जाकर खुलता था। इसने दाएं तरफ देखा, वहां दूर दूर तक सन्नाटा और खामोशी का राज था। बाएं तरफ नजर डाली जहां वो तवील कॉरिडोर खत्म हो रहा था, वहां सिर्फ एक मध्यम सा बल्ब रोशन था और बल्ब की मध्यम रोशनी में इसे वली नजर आ गया था। कॉरिडोर के अहतमाम पर जहां जाकर मजीद कोई कमरे नहीं थे और महज एक दीवार थी, वो वहां दीवार के सामने जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रहा था। वो खामोशी से बिल्कुल दबे कदमों चलती इसके पास आ गई। वो सजदे में था, इतना तवील सजदा। वो इसे ये कहने आई थी कि अब तुम अंदर चले जाओ, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, मगर वो सजदे से सर उठाएगा तो वो इसे ये बात कहेगी। वो वही इस दीवार के साथ टेक लगाकर वली से चंद इंच दूर जमीन पर बैठ गई। सजदे में झुके इसकी पीठ हल्के हल्के हिल रही थी। इसका पूरा वजूद होले होले लरज सा रहा था। वो रो रहा था। इस तबील सजदे में वो रोता अल्लाह से अपने दादा की जिंदगी की भीख मांग रहा था। बेतहाशा अमीर कबीर दादा के लिए दौलत जायदाद की खातर अपना कैरियर मजीद आला तलीम और कामयाबियां छोड़कर आया तो बहुत एहसान किया। किसी गरीब बेआसरा बेसहारा दादा के लिए सब कुछ छोड़कर वापस आया होता तो बात भी थी। ये सोचा करती थी ना वो वली सहीब खान के बारे में। खुद अपने गिरेबान में कभी जान कर देखा था। वो तो गरीब क्या, अमीर दादा के पास भी एक एग्रीमेंट करके आई थी। जब वो अमीर दादा इस जैसे गुस्ताख बदतमीज और खुदसा लड़की पर मुसलसल अपना पैसा लुटा रहा था तो वली सहेब खान तो इसका बहुत फरमाबरदार और चाहते लुटाने वाला पोता था। वो अमेरिका शौक से बैठा रहता, अपना कैरियर बनाता रहता और साथ यहाँ से अमीर दादा इसे इसी तरह पैसा भिजवाता रहता जैसे खुदगर्ज और बेहिस फारा बहरोज खान को भिजवाया करता था। और वली सहीब खान फारा ही की तरह कोई एहसान तो नहीं, मेरा हक है कहकर इसे वसूल किया जाता। क्या यह जरूरी था कि सहीब खान के बच्चे इसकी तरह फरमा बरदार और सादतमंद होंगे और बहरोज खान की औलाद उस जैसी जिद्दी सरकश। रिश्ता एक ही था मगर बहुत फर्क था। फारा बहरोज खान और वली सहेब खान और जरमीना अबादुर रहमान में दादा ने तीनों पोते पोतियों पर एक ही तरह चाहते निछावर की थी। तीनों को एक जितना ही चाह था मगर वो दोनों भाई बहन इसकी तरह एहसान फरामोश खुदगर्ज ना थे। वो दादा से सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे। एक पोती ने मौत के मुंह में धकेल रही थी और वो दोनों इसे मौत के मुंह से निकालने की सही करते दिन रात एक एक करके इसकी तीमारदारी कर रहे थे। अपना घर, शादीशुदा जिंदगी, जिम्मेदारियां, शोहर, बच्चे, इन सब के साथ जरमीना बहादुर रहमान अपने दादा के पास सुबह शाम दिन रात रुकी इसकी खिदमत इसकी तीमारदारी कर रही थी। नौकरों की एक फौज के होते इसका परहेजी खाना अपने हाथों से पकाती थी, इसे दुआ खुद देती थी, किसी को दिखाने या मुतासर करने के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत, अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी समझकर। जो फारा बहरोज खान से सिर्फ इसलिए नफरत करती थी कि वो इसके दादा को दुख पहुंचा रही थी, और ये वली सहेब खान जिससे वो नफरत करती है, जिसे वो जायदाद का लालची समझती है, वो इसे इसलिए तलाक नहीं देता क्योंकि वो जायदाद में बंटवारा नहीं चाहता। इसे अपने दाखिला फॉर्म पर दस्तखत करते आगा जान के कांपते हाथ भूल गए। वो हाथों की कपकपाहट लर्जिश के सबब दस्तखत कितनी मुश्किलों से कर पाए थे। दाखिला फॉर्म में इन दस्तखतों की इतनी छान फटक ना होगी मगर बैंकों दीगर मालियाती इदारों में तो हर बार होगा। अगर इसके साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स खुद नहीं बने थे, वली को बनाया था, तो इसलिए कि इनके दस्तखत में फ़र्क आ सकता था और लाजमन आता देकर हर जगह भी इसके दस्तखत को यकीनन कारामद इसलिए बनवाया गया था। कानूनी हैसियत इसलिए दिलवाई गई थी कि लिखते और दस्तखत करते इनके हाथों में मुसलसल लर्जिश कपकपाहट रहा करती थी। इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था या यूं ही इसने सजदे से सर उठाया था, वो इसी तरह ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए घुटने पर सर रखकर बैठी इसे टिकटिकी बांध कर देख रही थी। फारा ने देखा कि इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दिन भर में इसने एक बार भी इसे हवास खोते ना देखा था। इसके चेहरे पर टेंशन और परेशानी के आसार दो तीन बार जरूर नजर आए थे मगर वो सारा वक्त खुद को अपने साथ मौजूद दूसरे अफराद को संभाले रहा था। और इस वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रखकर जारो कितार होता हुआ एक बहुत मुख्तलिफ इंसान नजर आ रहा था। इसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते तमाम आंसू साफ किए और आहिस्ता आहिस्ता आवाज में इससे पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, नफी में साहिलाती वो वहीं बैठी रही। तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाओगी? ये सवाल वो इससे रात भी एक बार पूछ चुका था। इसने फिर नफी में सर हिला दिया। इसके वहां बैठने पर कोई इतराज किए बगैर वो दोबारा नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। इसे इबादत में मशगूल देकर वो वापस अंदर आगा जान के पास आ गई। जरमीना और बाद सुबह सवेरे आए थे आगा जान का नाश्ता साथ लेकर। आगा जान जाग चुके थे मगर इनकी तबीयत अभी भी संभली ना थी। उन्होंने बस लबों की जुम्बिश से इन लोगों के सलाम का जवाब दिया और फिर खामोशी से अपनी बीमार आंखों से इन चारों को देखते आंखें दोबारा बंद कर ली थीं। आगा जान को नाश्ता जरमीना करा देगी, तुम लोग अब घर जाओ। सीसीयू से बाहर निकलकर अबाद वली से बोला तो वो सर इस बात में हिलाते फौरन इससे बोला, चलो फारा। लेकिन वली, मैं आगा जान को खुदा हाफिज कह हो, हम अब दोपहर में यहाँ आएंगे, वो इसका जुमला काट कर कतईत से बोला। रात इसने इसकी बात मानकर इसे यहाँ रुकने दिया था, अब इस पर यह अखलाकी पाबंदी थी कि वो इसकी बात मानकर यहाँ से चली जाए। वली इससे पहले अंदर जाकर आगा जान को खुदा हाफिज कह आया था। वो अब सीढ़ियों के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। वो अंदर आई। जरमीना आगा जान का बेड सरहाने की जगह से थोड़ा ऊंचा करके अपने हाथ में गिलास पकड़े आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दूध इन्हें पिला रही थी। जरमीना इनके दाएं तरफ बैठी थी, वो खामोशी से बाएं तरफ आई। आगा जान के लबों पर इसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसने झुककर इनकी परेशानी का भूसा लिया और बहुत मुस्कुरा कर बशाश लहजे में बोली, मैं वली के साथ घर जा रही हूँ, दोपहर में आऊँगी। अब तब तक आपको अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक कर लेना है, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। उन्होंने सर सबात बहलाकर आहिस्ता आवाज़ में से खुदा हाफिज़ कहा। रास्ता पूरा खामोशी से कटा था। रास्ते भर इन दोनों ने आपस में कोई बात ना की थी और अब वो घर के सामने थे। चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वली गाड़ी अंदर ला रहा था और वो इस इमारत पर नज़रें मरकूज़ किए हुए थी। ये इसके डैडी का घर था। इसे इस घर के दोनों दीवार से कभी मोहब्बत क्यों नहीं हुई? क्या वो डैडी की बेटी नहीं, जिस जगह वो इतना बारहाना चाहते थे कि मरने से पहले इनकी आखिरी ख्वाहिश यहाँ वापस आना थी? एक बेटी ने अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में 6 साल लगा दिए, और 6 साल बाद आई भी तो किस तरह? क्या बाप का हुक्म मानने, इसकी ख्वाहिश पूरी करने की नीयत से खुद अपने वजूद से शर्मसार रोना दम वो गाड़ी से उतरी। वली इससे पहले गाड़ी से उतर चुका था। इस वक्त इनके गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी थी। वो इस गाड़ी और इससे उतरने वाले पर ध्यान दिए बगैर अंदर चली गई होती अगर इसने अपना नाम और एक जानी पहचानी आवाज ना सुनी होती। मुझे फारा से मिलना है, चौकीदार से ये जुमला बोलने वाले का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। वो वहीं ठहर गई। एक सेकंड से भी कम वक्त में इसने मोइस को गेट से दाखिल होते देखा। वो इसे यहाँ देखकर सीधा यहीं आ गया। इसके चेहरे पर गुस्सा और इश्तआल फैला हुआ था। चलो गाड़ी में बैठो फौरन, वली को मुकम्मल नज़रअंदाज करता वो इसे हुक्मिया लहजे में इंतहाई गुस्से से बोला, कहाँ जाना है मोइस? वो जवाबन सुकून से बोली, लाहौर। हम लाहौर जा रहे हैं अभी और फौरन, मैं और तुम, हम दोनों, काफ़ी है इतनी वजाहत? गुस्से के साथ इसके लहजे में तंज भी दार आया। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, ये वली का घर था, इसकी राजधानी, ये इसकी सल्तनत थी और वो यहाँ का बेताज बादशाह। चाहता तो पिछले कई हिसाब चुकाता मोइस को अपने चौकीदार से धक्के दिलवा कर और बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाल सकता था, मगर वो चेहरे पर कोई तासर लाए बगैर और कुछ भी कहे बगैर बिल्कुल लाताल्लुक सा पोज से चला गया। फारा ने दूर लकड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। वो घर के अंदरूनी हिस्से में जा चुका था। मैं आपको फ़ोन पर भी बता चुकी हूँ मैज, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अब ये आगा जान बहुत बीमार है, मैं इनके पास यहाँ हूँ, और बाद में भी आप कभी लाहौर वहाँ मुस्तकिल रहने के इरादे से हरगिज़ नहीं आऊँगी। कभी आप सबसे मिलने आ जाऊँ वो एक अलग बात है। वली के अंदर चले जाने की आवाज़ को पूरी तरह महसूस करते वो मई से बहुत पुरसकून लहजे में बोली, इसके तंज और गुस्से का असर कबूल किए बगैर, फारा मैं अपने हजारों काम छोड़कर यहाँ आया हूँ, मेरे पास किसी बहस का वक्त नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त फौरन मेरे साथ चल रही हो या नहीं? वो इसके जिद्दी और फैसला कुन अंदाज पर झिंझलाया, पहले से ज्यादा गुस्से से बोला, नहीं। इसका एक लफ्ज जवाब कतई नोयत का था। वो जितने गुस्से में था हैरत अंगेज तौर पर वो इतनी ही पुरसकून, फारा तुम मुझे नाराज कर रही हो, तुम्हारी ये फजूल जिद और गलत हरकतें हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर डालेंगी। इनके बाहम रिश्ते का हवाला देता वो कुछ नरम और धीमा पड़ा, मोइज मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, मुझे लगता है मैं जिंदगी में पहली बार कुछ सही कर रही हूँ। ये लफ्ज अदा करते इसने अपने अंदर कल से सर उठाते सासे निदामत को कुछ कम होता पाया। मईज जो लम्हा बार पहले नरमी लिए अंदाज में गोया हुआ था, इसके जवाब पर एकदम फट ही पड़ा। वह पहले से भी ज्यादा तैश और गुस्से में आ गया। वो उल्लू का पट्टा, दादा की बीमारियों की दास्तानें सुनाकर तुम्हें यहाँ ले आया और तुम चली आई बगैर कुछ सोचे समझे, बिना किसी से मशवरा किए, इन लोगों के साथ तुम्हारा खुला और जायदाद में अपने हिस्से का मामला कोर्ट तक चला गया है, ये सोचे बगैर, और अब जब तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है तो बजाय बात को समझने के अपनी बेवकूफ़ी पर हट धर्मी से जमी हो, पहले पुप्पो को अपनी जिद्दी हरकतों से नाराज करके कनाडा जाने पर मजबूर कर दिया और अब बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के मजीद हमाकतें करने पर तुली बैठी हो। ये इसके गुस्से की इंतहा थी, और जो वो अपने जुमलों में एक गाली को भी शामिल कर गया था, वरना मोइस जैसा कल्चर्ड और रिफाइंड इंसान कभी गुफ्तगू में घटिया अल्फाज को शामिल नहीं होने देता था। मैंने सिर्फ आपको प्रपोजल कबूल किया था, अभी हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद पर हक जिताकर आप मुझे कुछ भी कह सकें। ये मेरी जिद है, हट धर्मी है, हमाकत है या बेवकूफ़ी, मैं कुछ गलत हो जाने पर मदद मांगने आपके पास नहीं आऊँगी, आप बेफिक्र हैं, मैं अपनी ज़िंदगी और अपने फ़ैसलों की खुद मालिक और ज़िम्मेदार हूँ। वो अपना पुरसकून और धीमा अंदाज तरक करके या क्लख थी गुस्से में आ गई। वो गुस्से की तेज़ थी, इसे जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, मगर मोइस के साथ इसने इस तरह पहली बार बात की थी। इसके चेहरे पर नजरें जमाए वो चंद सेकंड बिल्कुल खामोशी से इसे देखता रहा। तो तुम मेरे साथ नहीं चल रही, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इस बार गुस्से से नहीं, इसने संजीदगी के साथ किसी कदर दो टोक अंदाज में पूछा, मैं आपके साथ नहीं चल रही, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अच्छी बात है, आखिरी अल्फाज सुकून से कहता वो यकदम ही वापस घूमा वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़े रहकर इसे जाता देखती रही। वो गेट से निकल गया। एक सेकंड बाद इसने बाहर एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। वो घर के अंदरूनी रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गई। अंदर आके इसने चारों तरफ नज़रें घुमाई। लाउंज पूरा खाली था। मुलाजमीन की आवाज़ें भी किचन या किसी दूसरे कोने से तो आ रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था और वली का तो यहाँ नामो निशान तक ना था। वो तवक्का कर रही थी कि वो यहाँ लाउंज में बैठा इसका इंतजार कर रहा होगा। इसने मईस को कुछ कहकर गालबन चौकीदार और आसपास देखते दूसरे मुलाजमीन के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहा, मगर वो इससे तो ज़रूर तंबीह करेगा कि आइंदा इसका कोई रिश्तेदार, खासकर मईस तजम्मल, यहाँ हरगिज़ ना आए। वो वली से बेशुमार बार बदतमीजी कर चुकी थी, बहुत बार इसकी सीधी बातों के भी उल्टे जवाब दे चुकी थी, मगर आज वो सोचे हुए थी कि बहुत तहजीब और शाइस्तगी के साथ वो इसे मईस से हुई सारी बात बता देगी। इस सारी बात से वो खुद ही समझ लेगा कि अपने किसी भी रिश्तेदार की यहाँ आमद में फारा की कितनी फीसद मर्जी शामिल होती है। इसे गुलखान एक कमरे से निकलता नजर आया। ये आगा जान के बिल्कुल बराबर वाला कमरा था। ये कमरा वली सहेब खान का है, वो जानती थी। वली के अपने कमरे में है, इसके सवाल का गुलखान ने इस बात में सर जवाब दिया था। वो इससे कुछ भी कहे या पूछे बगैर अपने कमरे में चला गया। वली पूछे तो बता देना मैं अपने पोर्शन में हूँ। एक सेकंड के तवक्कुफ के बाद इसने गुलखान से कहा और फिर आगा जान के कमरे में आकर ही दूसरे कोने वाला दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। इस हिस्से तक जाने का यकीनन कोई दूसरा बाहर से भी रास्ता होगा, मगर फिलहाल कोई नए रास्ते ढूंढने और समझने का इसका दिल नहीं चाह रहा था। सफ़ेद गेट की कुंडी खोल कर वह अंदर आ गई और फिर लॉन अबूर करके लाउंज से गुजरती अपने कमरे तक जाना चाहती थी, मगर कालीन पर सोफे के बिल्कुल पास इसे एक कागज़ गिरा नज़र आया था। वो आगे आई और वह नीचे कागज़ गिरा उठा लिया। इस कागज़ की प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई थी और इसको तय करके इतना छोटा बना लिया गया था जैसे माचिस की डिबिया। तय खोलते खोलते इसे अचानक ही याद आ गया ये कागज़ आगा जान की जेब से गिरा था। इस वक्त जब वो इनकी जेब से दवा निकाल रही थी तो साथ कोई कागज़ भी गिरा था। सॉफ्ट प्लास्टिक कोटिंग हुए इस कागज़ की सब तहें खुल चुकी थी और अब वो खुला हुआ पूरा का पूरा इसके सामने था। इस सफ़ेद कागज़ को देखकर अगर इसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई थी तो ये कोई ताज्जुब की बात ना थी। ये इसके बाप की आखिरी तहरीर थी, इनका इस्तीफ़ा। बाकी सब लफ्ज़ टाइप शुदा थे, मगर वो दस्तखत तो इनकी अपनी लिखाई थी। बेसाख्ता इसने इन हरूफ पर इस दस्तखत पर अपने लब रख दिए। इसे वालहाना चूम लिया। इसे पता ही नहीं था डैडी के इंतकाल पर इनकी मैयत साल ले जाने आए आगा जान अपने साथ चुपके से ये गैर अहम सा कागज़ उठा लाए थे। इसने डैडी की मेज़ पर तब वो इस्तीफ़ा रखा देखा था, मगर फिर इतने बड़े गम और नाकाबिले तलाफी नुकसान ने इसे इस कागज़ पर कभी ध्यान दिलाया ही नहीं था। इसने वो कागज़ इसी तरह वापस तय किया और इसे उठाकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ से वापस जाते हुए वो इसे हिफाजत से आगा जान के कमरे में रख देगी, ये सोचते हुए मुँह हाथ धोकर अभी वो बेड पर बैठी ही थी कि इसके कमरे का दरवाज़ा बजा। आने वाली लड़की रेशम नाम की वो दूसरी मुलाजमा थी जो सुद्धू के साथ हमा वक्त किचन में मसरूफ़ नजर आया करती थी। इसके हाथ में खाने पीने की अशिया से भरी एक ट्रे थी। इस ट्रे में मौजूद डिशेज सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का मजमुआ थी। वो अपने लिए खाने, नाश्ते, चाय, पानी किसी चीज़ का कहकर नहीं आई थी। तो अगर ये सब कुछ इसके पास लाया गया था तो इसे लाने का घर के किसी फ़र्द ही ने हुक्म दिया था, और वो फ़र्द कौन था वो अच्छी तरह जानती थी। इसने इसे नाश्ते या लंच के लिए बुलवाया नहीं था, बल्कि जहाँ पर वो थी वहीं इसका खाना भिजवा दिया था। वो अगर इसे डाइनिंग रूम में बुलवाता तो वहाँ भी बखुशी चली जाती, मगर जब यहाँ आगा जान मौजूद नहीं थे जिनके सामने सब अच्छा है और सब ठीक है का तासुर देना होता था तो ज़रूरत क्या थी इन दो लोगों के साथ बैठकर खाना खाने की जो एक दूसरे के साथ हर रिश्ता ख़त्म कर देने का अहद कर चुके थे। इसने खामोशी से मुलाजमा के हाथ से ट्रे ली और बेड पर सुकून से बैठकर खाना खाने लगी। वो आगा जान के सामने अपना मुरझाया जर्द बहुत ज़्यादा रोया और बिल्कुल कमलाया हुआ चेहरा लेकर नहीं, बल्कि बिल्कुल फ्रेश, खुशबाश और हंसता मुस्कुराता सेहतमंद चेहरा लेकर जाना चाहती थी। खुद को पूरी तरह खाने की तरफ रागब करके इसने पूरी दिलजमई से सब कुछ खाया। थरमास में भरी चाय के भी दो कप पी डाले। खाने पीने से फारिग होकर अब वो मोबाइल उठाकर अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर मिला रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? जब लाहौर अपने घर अकेली रह रही थी तब वो इसकी कॉल रिसीव ना करती थी, मगर अब जबकि वो इनके दुश्मन के पास जा पहुंची थी तब उन्होंने कॉल रिसीव कर ही ली थी। क्यों फोन किया है तुमने मुझे? इनका लहजा बेहद तलख और अंदाज दिल दुखाने की हद तक अजनबियत लिए हुए था। मम्मी, आगा जान को हार्ट अटैक। तुम्हारे आगा जान को जो कुछ भी हुआ है तुम इनकी लाडली चहेती पोती इनकी खिदमत के लिए पहुंच तो चुकी हो इनके पास। खूब दिल लगाकर इनकी खिदमत करो। अगर अब तक उन्होंने अपने पोते के साथ तुम्हारी रुखसती नहीं करवाई तो अन करीब आइंदा 20 सालों के बाद होने वाली मौत का सोचकर फिल फोर करवा लो। इनके लफ्जों में जहर था, कड़वाहट थी। इसकी नोक जुबान पर कई तलख जवाब आते आते रह गए, मगर वो लब बींच कर खामोश रही कि माँ को जवाब देना इसकी सरशत में ना था। वो तो इन्हें वो तमाम झूठ भी ना जिता सकी जो उन्होंने इससे हमेशा बोले थे, और जो गलत बयानियाँ हमेशा इससे की थी वो सब कुछ जान चुकी है, वो इन्हें जिता ना पाई। अपने अकाउंट में पैसा डलवाने या फारा के साथ ज्वाइंट होल्डर बनने से आगा जान को सख्त और दो टोक इनकार कर देने के बाद उन्होंने इसे हमेशा यही तासर दिया था कि ये आगा जान ही ने किया है। बहू की हैसियत जीरो करके सिर्फ पोती को फोकिया दी है। आगा जान के इसे मिलने के लिए आने से कई शरायत आयद करके रोक देने के बाद उन्होंने हमेशा इल्ज़ाम इन पर ही धरा था कि खाली बेतहाशा पैसा फेंका, समझते हैं कि पोती के फर्ज से सबकदोश हो गए। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। मैं ज़िंदगी भर ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना था तुम वहाँ जा चुकी, मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर चुकी। इस वक्त जो फ़ोन पर मुझसे बात कर रही है वो मेरी बेटी नहीं, मोहम्मद बख्तियार खान की पोती है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो फारा। नफरत भरे लहजे में अपने जुमले मुकम्मल करके उन्होंने फ़ौरन रब्ता ख़त्म कर दिया। ऐसे ही कह देने से कोई किसी के लिए नहीं मर जाता मम्मी। खामोश मोबाइल हाथ में लिए वो आंसू पीती आहिस्ता से बोली। जब वो आगा जान को मोहब्बतों से इंकारी होती थी तब भी इन्हें ऐसा लगता होगा वो कितने हर्ट होते होंगे, इन्हें कितनी तकलीफ कितना दुख पहुंचता होगा अगर आगा जान ने अपने बेटे को एक अनजान और गैर लड़की के लिए अपने मुकाबल खड़ा होता पाकर इसे घर से निकाल दिया था। तो आप इन्हें जालिम जाबर और सख्त दिल क्यों करार देती हैं? मैं तो फिर अपने दादा के पास आई हूँ, वो दादा जो बरसों से मुझ पर मोहब्बतें निछावर कर रहा है, मोहब्बत के साथ साथ जिसके मुझ पर बेशुमार बेहिसाब एहसानात भी हैं। डैडी तो बाप की 27 बरस की मोहब्बत और शफकत भरे साथ पर 26 या 27 माह से भी कम के एक लड़की के साथ को फोकियत दे गए थे। अगर आप अपनी बेटी से अपनी गलत और नाजायज बात पर भी फरमाबरदारी और सादतमंदी की तवक्का रखती हैं तो आगा जान भी तो बेटे से आप ही जैसे अपनी तकवात रख सकते थे, और इनके पूरा ना होने पर आप ही की तरह इनसे कतई तलकी का ऐलान कर सकते थे। वो इसकी बात सुने बगैर कब का रब्ता मुनक़ता कर चुकी थी और वह हनूज इसी तरह फोन कान से लगाए बैठी थी।